नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भाजपा संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर विनिर्माताओं और व्यापारियों से जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 48 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में, बचाव और राहत अभियान जोरों पर। बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। अगले वर्ष के FIH विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई किया। और अमरीकी ओपन टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा सिंगल्स खिताब जीता, फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने नई दिल्ली में आयोजित भाजपा सांसदों की प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। इसमें उत्पादकों और व्यापारियों से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी और कारोबार तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रस्ताव में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साहसिक और जनहितैषी कदम के लिए बधाई दी है। इसमें कहा गया है कि ये सुधार नागरिकों के जीवन में आसानी लाने, व्यापारियों को सशक्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के लक्ष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हाल में किए गए इन सुधारों में देश के लिए निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुधारों के अगले चरण से जीएसटी कर प्रणाली सरल हुई है और इसमें नागरिकों के हित को केंद्र में रखा गया है। खाद्य वस्तुएं और औषधि तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने से इनकी कीमतों में कमी आएगी। छोटे व्यवसायियों, निर्यातकों और स्टार्टअप उद्यमों के लिए भी प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
प्रस्ताव में ये भी उल्लेख किया गया है कि मासिक जीएसटी संग्रह 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचना अधिक अनुपालन और अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत है। 8 वर्षों में जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 के 66 लाख से दोगुनी होकर 1.5 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक संग्रह बढ़कर 22,00,000 करोड़ से अधिक हो गया है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली से पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री का ये वादा 3 सितंबर को पूरा हुआ, जब जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के अंतर्गत सौर कुकर, सौर पैनल, पवन चक्की बायोगैस प्लांट और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले सिस्टम पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कोयला और लिग्नाइट पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% कर दिया गया है, ताकि उद्योग हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी 5% जीएसटी के अंतर्गत ही रहेंगे, ताकि साफ और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले। भारत जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत होगा। उद्योगपतियों ने इन जीएसटी सुधारों को संतुलित और सही कदम बताया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी परिषद के सुधारों को हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार कहा है। सौर, पवन और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं को अपनाना भारत की 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत जिम्मेदारियां निभाने के लिए जरूरी है। ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा सांसदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला अत्यंत व्यवस्थित रही है और प्रधानमंत्री स्वयं भी सभी प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित थे।
It's a very systematic and as always BJP's culture is extremely professional. Our MPs have whole day from this morning 8 o'clock attended the training session and we are always like that. Our colleagues, the MPs from other NDA parties will also join us and Honorable Prime Minister will also make the concluding remarks.
बिहार में कल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना का पोर्टल शुरू किया और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार की महिला को अपनी रुचि का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक चयनित महिला को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 10,000 रूपए मिलेंगे। योजना के तहत महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव और कस्बों में स्थानीय बाजार या हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। अगले चरण में रोजगार शुरू होने के 6 महीने बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा और आवश्यक होने पर चयनित महिला लाभार्थी को 2,00,000 रूपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करेगी। इस मामले की सुनवाई में गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक दलों की याचिकाएं शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान मसौदा मतदाता सूची के 7,24,00,000 मतदाताओं में से 99.5% मतदाताओं ने पुनरीक्षण के दौरान संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 48 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और लगभग 41,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जलमग्न हो गई है।
प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलमग्न हो गई है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और प्रयागराज जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राज्य भर में प्रशासन द्वारा स्थापित राहत और बचाव शिविरों में 11,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। उफनती यमुना के कारण मथुरा के पुराने शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वृंदावन के कुछ मंदिर बाढ़ के कारण बंद कर दिए गए हैं। परिक्रमा मार्ग भी पानी में डूबा हुआ है और श्रद्धालुओं के उस इलाके में जाने पर रोक लगा दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कल पंजाब का दौरा करेंगे। वे पीड़ितों को अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। श्री जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में भारी बारिश न होने और धूप खिलने की भविष्यवाणी को प्रभावित लोग उम्मीद की किरण मान रहे हैं। इस बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राज्य भर के 2,050 गांवों से 3,87,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर विस्थापित हुए हैं। भारतीय सेना, वायुसेना, NDRF, BSF के बचाव दल और स्वयं सेवकों ने अभी तक 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। इनके अलावा सैकड़ों NCC कैडेट और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मेरा भारत आपदा मित्र भी स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान कल से छात्रों के लिए खोले जा रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति के आकलन के लिए राज्य का दौरा किया था। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने लगा है। आज सुबह जलस्तर 205.22 मीटर दर्ज किया गया। यमुना के आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में भेजा गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और गुजरात के कुछ स्थानों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य महाराष्ट्र में अगले 3-4 दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा होगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। दुनिया भर में इस वर्ष दूसरा चंद्रग्रहण देखा गया। रात 9:57 से शुरू होकर 11:01 तक पृथ्वी की छाया ने चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे ब्लड मून का दुर्लभ नजारा देखने को मिला। चंद्रग्रहण पूरे भारत में लगभग 48 मिनट तक स्पष्ट रहा। यह बिना किसी उपकरण के खुली आंखों से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
जी फरहत, खेलों की खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हॉकी से। भारत ने एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। बिहार के राजगीर में कल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया।
इन द हार्टलैंड ऑफ बिहार इंडिया हैव बीन क्राउन्ड चैंपियंस ऑफ एशिया। द हीरो एशिया कप 2025 इज देयर्स। हरमनप्रीत सिंह एंड हिज मेन से बेल्जियम नेदरलैंड्स हियर वी कम फॉर द FIH वर्ल्ड कप।
इसके साथ ही भारत ने नीदरलैंड्स और बेल्जियम में अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत की तरफ से सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और अमित रोहिदास ने गोल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को इस शानदार खिताबी जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारतीय हॉकी और खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को नई उपलब्धियां हासिल करने और देश को गौरवान्वित करने की कामना की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि ये खिताबी जीत मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार का परिणाम है। और फरहत, अगर बात करें टेनिस की, तो अमरीकी ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल रात कार्लोस अल्काराज ने यानिक सिनर को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। अल्काराज ने सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ ही अल्काराज ने पुरुष टेनिस में शीर्ष रैंकिंग फिर से हासिल कर ली है। इसके अलावा शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख ने कल रात उज्बेकिस्तान में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 के ओपन वर्ग में मिस्र के बासेम अमीन को चौथे राउंड में हराया। जी फरहत, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
धन्यवाद मुकेश। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और उत्तर प्रदेश गृह विभाग के मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने कल लखनऊ में पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्य खेल स्पर्धाएं कल से शुरू होंगी और 11 सितंबर तक चलेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में नेत्रदान के बारे में भ्रांतियां दूर करने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेत्र विज्ञान केंद्र की प्रोफेसर और राष्ट्रीय नेत्र बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता शर्मा तथा नेत्र बैंक के प्रभारी और भारतीय नेत्र बैंक संघ के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112371717 और 0112331444। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का सत्र आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद फरहर। उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मचने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, उत्तर काशी में बादल फटा, पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और मणिपुर के दौरे की तैयारियां तेज। जीएसटी सुधारों से इकोनॉमी को मिलेगी गति, करों में कटौती लोगों को ज्यादा उपभोग के लिए प्रेरित करेगी। राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों की सुर्खी है, कागज पर जीएसटी बढ़ने से किताबें महंगी होने के आसार, हिंदुस्तान की खबर है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अद्भुत शीर्षक से लिखा है, धरती की छाया से पूरा लाल हो गया चांद। कैंसर रोगियों के लिए उम्मीद की बड़ी किरण, रूस में बनी वैक्सीन ट्रायल में 100% कारगर साबित हुई। हरी भूमि की खबर है, 1.5 माह में 41,000 मजदूर हो गए साक्षर, जयपुर में मिट्टी से अक्षरों तक का कमाल, साक्षरता की लहर, राजस्थान पत्रिका में है। पेंटिंग, सिलाई और पॉटरी जैसे नए शौक से युवा बन रहे कम्युनिटी, इसके जरिए डिजिटल थकान से पा रहे छुटकारा, दैनिक भास्कर की खबर है।
धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर विनिर्माताओं और व्यापारियों से जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 48 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में, बचाव और राहत अभियान जोरों पर। बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। और अमरीकी ओपन टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा सिंगल्स खिताब जीता, फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।